Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Acharya Swami Sri Bhagavatanandaji Saraswati Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Param Premaspad Paramatma Sup. Ab श्वेताश्वर उपनिषद का संबंध भाष्य है। संबंध भाष्य का शंकराचार्य जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि इसका क्या संबंध है, कर्म का, ज्ञान का, उपासना का लेकर के उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। यद्यपि श्वेताश्वतर उपनिषद शंकराचार्य जी के लिए भाष्य बनाना कम कठिन मानते हैं, क्योंकि आनंदमयी टीका, आनंदगिरी की टीका इस पे है नहीं, इसलिए लोग संदेह करते हैं कि बाद में उनके मठ में रहने वालों ने लिख दिया है, शंकराचार्य की इस पे भाष्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन शंकराचार्य कृत भाष्य और इस भाष्य में अंतर नहीं है, एक साई बिल्कुल भाष्य है। इससे ये पता चलता है कि शंकराचार्य जी ने लिखा हो या उनके द्वारा पढ़े हुए किसी शिष्य ने लिख दिया हो, ऐसी किंवदंती है। दो प्रस्थान है वेदांत में, एक विवरण का, एक वाचस्पति का, एक सन्यासी एक गृहस्थ है। जो विवरणकार सन्यासी है तो दोनों मत हैं। एक मत ये कहता है कि वेदांत में सबसे पहले वैराग्य की जरूरत है, वैराग्य हो यहां से ब्रह्मलोक तक और किसी लोकांतर की चीज या सिद्धियां या जो कुछ मिलेगा साथी सामान वो सब बिगड़ जाएगा, रहेगा नहीं, साथ में नहीं जाएगा। तो वैराग इतना तीव्र होना चाहिए कि उस वैराग के सामने कोई टिक न सके, इतना वैराग होना चाहिए। विवरणकार ये कहते हैं कि भाई जरूरत नहीं है ज्यादा वैराग की, क्योंकि ये तो राग होने पर वैराग होता है, तो राग द्वेष कहीं न हो। तो वानप्रस्थ कहते हैं प्रस्थान सही वाले वाचस्पति जी कि ऐसा संभव ही नहीं है, राग द्वेष तो किसी में होता है, इंद्रियां किसी पर राग करती हैं और किसी पर वैराग करती हैं, प्रायः इंद्रियों का यही चलता है, कुछ न कुछ राग हो ही जाता है, कहीं मिठाई से, कहीं दूध से, कहीं दही से, कुछ न कुछ राग हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान का माखन से था तो माखन मिसी खा दे दे, तो राग तो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक राग द्वेष तो हो ही जाता है। राग द्वेष सभी दर्शन वालों ने लगभग यही माना है कि राग द्वेष दो ऐसे हैं कि वो इंद्रियों को नचा देते हैं, सारे शरीर को नचा देते हैं। इसमें संबंध भाष में प्रारंभ से आया कि राग द्वेष दो दैत्य हैं, दो वो कान के मैल से पैदा हुए विष्णु भगवान के, वो सो रहे थे तो जब कान के मैल से पैदा हुए, कान के मैल से, अच्छा माने श्रवण भी गलत, मनन भी गलत, निर्दिध्यासन भी गलत, श्रवण गलत ऐसे हैं कि वो सो रहे थे और कान के मैल से दो दैत्य निकल पड़े, एक का नाम मधु था, एक का नाम कैटव। तो निकल पड़े और गदा उठाई अपनी और ब्रह्मा जी को दौड़े, वो उनके नाभि के कमल में प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर रात्रि सूक्त का पाठ किया तो उससे जग गए, भगवान जग गए तो लड़ाई होने लगी, कौमुदगी गदा उठाई और युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते बहुत दिन बीत गए, 5000 वर्ष बीत गए, कोई जीते हारे ना। तो भगवान ने स्मरण किया भगवती का, भुवनेश्वरी का, कि भगवती अब करो कृपा, अब तो बहुत दिन हो गए लड़ते लड़ते। तो भगवती ने क्या किया, उनको मोहित कर दिया दोनों दैत्यों को। तो दोनों दैत्य कहने लगे तुम हो कौन, कहे हमको तो विष्णु भगवान कहते हैं। अच्छा तुम अकेले हो, हम दो जने लड़े और जीत नहीं रहे, अच्छा तुम हमसे वरदान मांग लो। तो भगवान हंसने लगे, कहने आप देंगे नहीं, कहते दे देंगे, कि तो तुम हमारे हाथ से मर जाओ, यही वरदान मांग रहे हैं। तो उन्हें क्या पता था कि ये वरदान मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने यही वरदान मांग लिया। कहा कि तो ठीक है वरदान हमने दिया, लेकिन वहां मरेंगे जहां जल की बूंद नहीं होगी। अब उस समय जल ही था, धरती थी नहीं, जल ही जल था सब जगह। तो भगवान ने पद्मासन लगा लिया ऐसे, और पद्मासन लगा के बोले कि जाओ जल ढूंढ लाओ, अगर कहीं मिल जाए तो हमें बताना आगे। तो चरणों पे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, 1000 वर्ष बीत गई। लौट के आए, बोले भगवान जल तो कहीं नहीं दिखाई दिया। तो बोले बस धरो सिर। तो सिर धरा चरणों पर और सुदर्शन से काट दिया। इस कथा का ये आशय है कि सुनने में कहीं गलत हो जाता है। जैसे एक सज्जन नीके बैठे थे, नीके भले हमारे पास, और घर गए और लाल लाल आंखें कर लाए। हमने कि ये रोग कैसे ले आए, कहा कि क्या बताएं, हमारी पत्नी और लड़की दोनों लोभी हमें बताए रही, हमें बड़ी गुस्सा लगी। तो हमने कि वो गुस्सा उतारी, फिर वहां गए। कहा गए कहां, हम तो दरवाजे के किनारे खड़े रहे, वहां से सुना है ऐसा बोल रही। तो ये कान का मैल कहलाता है। क्या जरूरत थी है तो सामने पहुंच जाते, या फिर जरूरत क्या है सुनने की, वो तो कोई न कोई स्तुति निंदा करेगा ही। स्तुति करेगा तो अभिमान हो जाएगा, निंदा करेगा तो गुस्सा आ जाएगी। जो तुम चाहते नहीं वो हो जाता है, तो क्रोध आती है। ये इच्छा की आपूर्ति का नाम क्रोध है, इच्छा की पूर्ति का नाम लोभ है। तो तुम्हारी इच्छा अपनी प्रशंसा सुनने की है, प्रशंसा सुनने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है। निंदा कोई करेगा तो अपमान समझा जाएगा, उसमें निंदा स्तुति में पड़े रहते हैं। तो ये राग है, कान के मैल से दो दैत्य पैदा हुए, ये राग और ये द्वेष, ये इंद्रियों पर बैठ जाता है। ये व्यवस्थित माना है, गीता में कहा राग द्वेषु व्यवस्थित तयोर्न बस वांगे तव यश पर पंथनऊ, वो तुम्हारे लक्ष्य में बाधक बन जाएंगे, इसलिए उनके चक्कर मत पड़ना। राग द्वेष समाप्त हो जाने पर उपविवरणकार कहते हैं, राग द्वेष समाप्त अगर हो जाए इंद्रियों का तो ही वैराग्य हो गया, वैराग का चिन्ह होना चाहिए। ये प्रस्थानोत्तरी में विवरणकार सन्यासी मत है। अच्छा वो ये कहते हैं कि पहले तत्व ज्ञान हो जाए फिर वैराग अपने आप हो जाएगा। तत्व का ज्ञान अगर हो जाएगा तो वैराग फिर हो जाए, ये मालूम पड़ेगा ये असत वस्तु है, ये थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी, असत वस्तु के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा। और वो कहते हैं कि नहीं, समाप्त तो नहीं होता है, मिट जाता है, थोड़ी देर दब जाता है। यही दोनों में अंतर है। चिन्ह मूर्ति सदान है, सदानंद अद्वयानंद बताया, स्वाभाविको एम ब्रह्म स्वरूपो एम आत्मा, आत्मा का लक्षण किया संबंध भाष में। चिन्ह मूर्ति, चिन्ह मूर्ति माने चिद मूर्ति, और सदानंद सत चिद आनंद हो गया, सत सत आ गया और चिद आ गया, आनंद आ गया, आनंद मूर्ति ब्रह्म स्वरूपा अयम आत्मा, ब्रह्म रूप ये आत्मा है। अब इसको लगा लो संबंध भाष्य, देखो चिन्ह मूर्ति माने चिन्ह मूर्ति अगर नहीं होगी तो जड़ हो जाएगी, दृश्य वर्ग में चला जाएगा और दृश्य वर्ग सब ऐसे ही होता है, जड़ होता है दृश्य वर्ग, तो चेतन माना नहीं गया। चिन्ह मूर्ति और सदानंद अद्वितीय, सदा आनंद है, तो आप भी यही चाहते हैं हमेशा जिंदा रहें सत, हमेशा ज्ञानी रहें, कोई मूर्ख नहीं रहना चाहता। अगर कोई एक आध कम पढ़ा लिखा होता है तो उसके रात दिन चिंता लगी रहती, क्या बताएं गीता कैसे पढ़े, हम पढ़े नहीं है। अरे भगवान कोई गीता संस्कृत अकेले जानता है, हिंदी में पढ़ो, हिंदी हिंदी पाच लो, उसमें क्या बात। भगवान तो दिल में रहता है, बंगाली में रहने वाला बंगला जानता है, गुजराती में रहने वाला गुजराती जानता है, तो दिल में रहने वाला सबकी दिल की भाषा जानता है। ये आग्रह नहीं करना चाहिए संस्कृत ही पढ़े हुए तब, और हिंदी बांच लो उसमें क्या। इसी तरह से चिन्ह मूर्ति बताई, ज्ञान है, हर एक चाहता है कि ज्ञानी हुए हम, कुछ न कुछ साइंस कुछ कुछ नया आविष्कार करें, नई खोज करें। बालक को लेके चलते हो, वो पूछता है ये क्या ये क्या, तो माता पिता चिढ़ जाते हैं, अरे तुम तो पूछते हो ये क्या है क्या। उसके अंदर जिज्ञासा पहले से रहती है और फिर कैसे खेलने लगता है, आनंद में होता है, आनंद उसका उद्रेक होता है। हमने गाय के बछड़ा को देखा, पहले दूध पी लेगा, माने उसको ये ज्ञान है पूर्व जन्म का कि दूध है, दूध से भूख मिटती है, और फिर उछलने लगता है, चिन्ह का उद्रेक होता है चित्त का, और पहले खड़ा होना चाहता है, माने कर्म कर्म जितने भी हैं सत तत्व में, और ज्ञान जितने भी है वो चित्त तत्व है, सुख जितने भी हैं वो आनंद तत्व है, और तीन तत्व हैं जैसे वियोग अपमान और हानि, यही तीन दुख हैं, और कोई दुख नहीं है। वियोग होगा या अपमान होगा या हानि होगी, यही दुख है तीन। तो ये कह रहे थे कि चिन्ह मूर्ति इसलिए कहा गया कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, वो पंचमहाभूतों से अलग करने के लिए कहा गया, चिन्ह मूर्ति है वो चिदानंद और सत है और आनंद रूप है और सदा रहने वाली है। आप लोग भी चाहते हो कि जिंदा रहें और कोई ठगे ना और आनंद में रहें, तो दूसरों को भी रहने दो भाई, जियो जीने दो, आनंद में रहो रहने दो, और ज्ञान अर्जन करो और करने दो, दूसरे को भी तो ज्ञान अर्जन करने दो, दूसरा कोई है ही नहीं, ये सोच लेना चाहिए। तो चिन्मय मूर्ति है, सत है, अद्वय अद्वय इसलिए कहा कि एक कह देते एक 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 दो हो जाते हैं, एक एक ग्यारह भी हो जाते हैं, तो अद्वय 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 कितने बार कह दो अद्वय रहेगा। कोई कोई कहते हैं कि अद्वय का अर्थ है दूसरा स्कंद अकेला न लगाए तो अद्वितीय है वो, दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का न पढ़े तो अद्वितीय है वो, अद्वितीय हो गया। और वो ये कहते हैं वैष्णव लोग अद्वय का अर्थ यह है, ये नहीं है कि माने द्वैत नहीं है, अद्वय का मतलब है ये बेजोड़ हैं, इनका कोई सानी का नहीं है, न तो समोच्च अधिकाओ को तो न्यो, ये है कोई उसके बराबर का कोई नहीं है, ये कहते हैं अद्वैकार्थ। अद्वैकार्थ ये नहीं कि एक ही ब्रह्म है, वैष्णव लोग कहते हैं, अलग 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 परपाटी है, वैष्णव लोगों की अलग परपाटी है और शैव लोगों की अलग है, शाक्त लोगों की अलग है। लेकिन सगुण साकार का उपासना तब तक करना चाहिए जब तक अपनी देह में बुद्धि हो। जब तक अपने निर्गुण न हो जाओ, अपने गुण वाले हो और परमात्मा का निर्गुण ध्यान करो तो कैसे लगेगा। पहले देह से अध्यास छूटे और देह वाला न हो तब देह वाले देह से रहित का ध्यान करो। और अगर देह में पड़े हो और निर्गुण का ध्यान कर रहे हो तो नहीं लगेगा। वैराग यहाँ तक वैराग का बात बताई, वैराग शरीर से भी वैराग हो। आप देखिए ना, कपड़ा अच्छे से अच्छा हो इसको पहना दो तो गंदा हो जाता है, गंगा जल लाओ और पी लो तो शरीर में लगते लगते गंदा हो जाएगा। शरीर से ज्यादा गंदी कोई चीज पवित्र नहीं है, शरीर से गंदी चीज कोई नहीं है, ये तो पवित्र है ही नहीं, बिल्कुल अपवित्र है। क्योंकि कपड़ा पहन लो या कोई चीज धारण कर लो गंदी हो जाती है इसके संपर्क से। तो कहा गया है कि गंदगी न करो, संगत अच्छी करो। तो संगत तो पहले सबसे पहले बिगड़ जाती है ही, शरीर के साथ संबंध हो जाता है और शरीर सबसे ज्यादा गंदा है। तो इसलिए वैराग प्रधान होना चाहिए ये कहते हैं, तब ये बात समझ में आएगी। अयम अयम शब्द से कहा, अयम आत्मा चिन्मूर्ति सदानंद अद्वय और चिन्ह अद्वय अद्वय मूर्ति है, अद्वितीय है ये, और ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप का मतलब ये आत्मा ही ब्रह्म रूप है। अपरिच्छिन्नता दिखाई इसमें, अपरिच्छिन्नता माने असीमित, अनलिमिटेड, असीमित है, अनंत है। आपके आत्मा में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, कोट कोट ब्रह्मांड जो लगे हैं भगवान के वो सब आपके अंदर है, आपकी इतनी सत्ता मजबूत है। तो सद ही चिद है, चिद ही सत और सच्चिदानंद अद्वय है, अद्वितीय है। ये बताया आत्मा का लक्षण। माया का लक्षण बताया, स्वाश्रया अनुभवगम्या, स्वाश्रया अनुभवगम्या एक और कहा साभाषया। और बहुत लक्षण ये प्रतिबंध, प्रतिबंध का स्वाभाविक स्वाभाविक अशेष पुरुषार्था, संपूर्ण अशेष माने संपूर्ण पुरुषार्थों को मंद कर देती है, फिर करती है, स्वाभाविक है। ये माया है अविद्या, अविद्या कैसी है स्वाश्रया। इसमें भी विवरण और प्रस्थान दोनों प्रस्थानता ही में दोनों में अंतर है। विवरणकार जो सन्यासी हैं वो तो ये कहते हैं कि जब ब्रह्म एक ही है, अद्वितीय है नहीं कुछ, अद्वितीय ब्रह्म है तो वही आशय हुआ, वही विषय हुआ। और वाचस्पति कहते विषय दूसरा है और उसमें कर्म कर्त विरोध हो जाए, हम आत्मा को नहीं जानते। ये तो प्राय लोग कहते अरे हम क्या जाने भाई, हम तो मूर्ख हैं। तो अपनी मूर्खता को जानने वाला मूर्ख थोड़ी होगा, अपनी मूर्खता को तो जान रहा है वो। हम फ्रेंच भाषा नहीं जानते, तो नहीं जानना ये अज्ञान है। फ्रेंच भाषा ये विषय है। तो ऐसे आत्मा को हम नहीं जानते, अपने को हम नहीं जानते, तो आत्मा आत्मा को विषय और आशय एक ही हो जाएगा, तो कर्म कर्त विरोध हो जाएगा, माने कर्म और कर्ता दोनों एक ही हो जाएंगे। कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है, कर्म कर्ता विरोध हो जाएगा, ये कहा। तब उन्होंने कहा कर्म कर्त विरोध इसलिए होगा कि एक ही वस्तु है, दूसरी वस्तु ही नहीं है, तब कर्म कर तो विरोध कैसे होगा। जब दूसरी कोई वस्तु होए सजातीय विजातीय सुगंध भेद शून्य। सजाती माने पेड़ जैसे आम का पेड़, और विजाति माने बबूल का पेड़, और स्वगत भेद माने अपने में शाखा पत्ता फूल फल डाली, ये स्वगत भेद शून्य। तो सजातीय कोई उसका सजाती नहीं है, और विजाति माने कोई विपरीत भी नहीं है, और स्वगत माने फूल पत्ता जैसे स्वगत भेद ऐसे उसमें नहीं है। तो अद्वितीय वस्तु जब ब्रह्म है, एक अद्वितीय वस्तु है, तब भला उसमें विरोध कैसा। आशय और विरोध तब होता जब दूसरा कोई होता। तो इसीलिए कहते हैं शंकराचार्य का मत बौद्ध से मिलता मिलता है। बौद्ध लोग ये मानते हैं, उनके यहाँ ये है कि वस्तु बाहर नहीं है, वस्तु भीतर पहले चित्रित की जाती है। जैसे आप लोग बिल्डिंग बनाते हो, पहले नक्शा पास करा देते हो, तो नक्शा में आ जाता है इतने घर की बनेगी, इतने बिल्डिंग बनेगी, इतने यहाँ खिड़की लगेगी, यहाँ दरवाजा लगेगा, ये पहले मन में सोच लेता है इंजीनियर। मन में सोच लेता है इंजीनियर, फिर कागज में उतारता है, और कागज में उतार के उस नक्शा को पास कराए कि फिर तब बनता है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि ये प्रत्यय पहले भीतर होता है, फिर वो चीज बाहर हो जाती है। तो सब चीज नष्ट होने वाली है, नष्ट हो जाती है। भैया करना इसमें श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि जैसे घर कहा तो घा आ रा आ बोला और नष्ट हो गया, घा खत्म, रा आ गया, रा खत्म बोल गया। तो ऐसे प्रतिक्षण चीज ध्वंस हो रही है, तो फिर आवाज कैसे, अर्थ कैसे लगता है। कैसे जैसे घर कहा ग्रह कहा, तो ग्रह गा रा हा जब तक आया तब तक वो खत्म हो गया, लेकिन दूसरे क्षण तुरंत प्रकट हो जाता है। दूसरे क्षण पहले क्षण में नष्ट हुआ, दूसरे क्षण प्रकट हुआ, फिर नष्ट फिर प्रकट। तो ऐसे इस तरह से घर शब्द का अर्थ लग जाता है। तो स्वाश्रया अनुभव गम्या माने दोनों प्रस्थान वाले ही मानते हैं, यद्यपि थोड़ा थोड़ा अंतर है। वो विवरण कहते हैं, विवरणम श्वेता सूत्र उपनिषद का हम विवरण कर रहे हैं। विवरण माने मुंह खोलना, और संभार माने हसा संभारण आदा घोषास्य, ये व्याकरण की चीजें हैं। विवार माने खुलना होता है, और संभार माने बंद होना होता है। तो अब हम मुंह खोल के ये बताना चाहते हैं कि माया क्या है, आत्मा क्या है, ये उन लोगों ने कहा। विवरण का ये अर्थ है, विवरणाख्यानम इदम श्वेता सुतर उपनिषद। इदम कहते हैं ये कैसी है माया, स्वाश्रया अनुभव गम्या अनुभव में आती है। तो सत है कि असत है, है कि नहीं है, क्या है नहीं है इसलिए प्रतीत होती है। प्रतीत होती है तो का है, तो का है तो नहीं, तो है नहीं तो फिर क्यों प्रतीत होती है। तो प्रतीत होने वाली चीज सब कुछ है थोड़ी होती है। घटासन पटासन ये तो है, घड़ा है, वस्त्र है, संसार है, तो दो सत्ता मानी। इसीलिए एक पारमार्थिक एक व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक जैसे सपना वगैरह होता है, प्रातिभाषिक है ये स्वप्न, और व्यवहारिक ये जगत है, यह नाम से जगत है। तो सत्ता हुई तीन, और ये बुद्धि की सत्ता है, ये और किसी की पारमार्थिक सत्ता नहीं है। ये समझने के लिए तीन सत्ता है, मान ली, तीन सत्ता होती है। तो स्वाश्रया अपने आश्रय को ढांकने वाली, अपने आश्रय को ढांकने वाली, जैसे मैं मूर्ख हूं, अहम अज्ञो हम, तो अज्ञ मैं नहीं जानता, ये अपने को तो आत्मा को ढांका, अपने को हम नहीं जानते हैं, तो अपने को नहीं जानते हो तो अपने ही तो ढका, विषय अपने बना। वो कहते हैं कि विवरणकार की आत्मा को अज्ञान ढाक लेता है, अज्ञान ज्ञान की पूर्णता को ढाक लेता है, जब पूर्णता को ढाक लेता है तो अज्ञान दिखने लगता। तो अज्ञान अज्ञान अविद्या एक ही बात का हो, अपने आशय को, एक तो कहते हैं ब्रह्म ही आशय, ब्रह्म ही विषय, और एक ये कहते हैं कि नहीं, आशय तो परमात्मा है,